अध्याय 22 मूसा। ये अध्याय निर्गमन 1 से 4 पर आधारित है। मिस्रवासियों ने अकाल के दौरान स्वयं के लिए खाद्य सामग्री जुटाने के लिए अपनी भूमि और मवेशियों को राजा को बेच दिया था और अपने आप को अंततः चिरस्थायी कृषि दासत्व के लिए विवश कर दिया था। यूसुफ ने समझदारी से उनके निवारण हेतु प्रबंध किया। उसने उन्हें राजसी पट्टेदार बनने की अनुमति दे दी। वे फिरौन की भूमि के स्वामी तो थे, लेकिन अपने श्रम की उपज का 5वां हिस्सा वार्षिक शुल्क के तौर पर देते थे। लेकिन याकूब के पुत्र ऐसे प्रतिबंधों की आवश्यकता के अधीन नहीं थे। मिस्र देश को यूसुफ द्वारा दी गई सेवा के आधार पर उन्हें न केवल राज्य का कुछ भाग निवास स्थान के रूप में प्रदान किया गया, वरन उन्हें कर देने से भी छूट दी गई और अकाल के दौरान उन्हें उदारतापूर्वक भोजन वस्तु मुहैया की गईं। फिरौन ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि यूसुफ के परमेश्वर के करुणापूर्ण हस्तक्षेप के कारण मिस्र ने बहुतायत का आनंद उठाया, जबकि अन्य राज्य अकाल से नष्ट हुए जा रहे थे। उसने ये भी देखा कि यूसुफ के शासन प्रबंध ने राज्य को अत्यंत समृद्ध किया था और इस कारण याकूब के परिवार पर राजसी कृपा दृष्टि बनी रही। लेकिन समय बीतने पर जिस महान व्यक्ति का मिस्र ऋणी था और जिसके श्रम से वो पीढ़ी धन्य हुई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। ऐसा नहीं था कि वो राज्य के प्रति यूसुफस की सेवाओं से अनभिज्ञ था, लेकिन वो उन्हें मान्यता नहीं देना चाहता था और जहां तक संभव था उन्हें बिल्कुल भुला देना चाहता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इसराइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब ये बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसराइलियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, वे फूलने फलने लगे और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। याकूब के पालन पोषण द्वारा उस समय के फिरौन की कृपा दृष्टि से वे बढ़ते और फैलते चले गए, लेकिन उन्होंने स्वयं को एक विशिष्ट जाति के रूप में रखा था और धर्म और रीति रिवाजों में मिस्र के लोगों के साथ समन्वय नहीं बढ़ाया था। उनकी बढ़ती जनसंख्या ने अब फिरौन और उसके लोगों में भय उत्पन्न कर दिया कि युद्ध के समय वे मिस्र के शत्रुओं के साथ न मिल जाएं। लेकिन विधि अनुसार उन्हें देश निकाला नहीं दिया जा सकता था। उनमें से कई योग्य व समझदार कारीगर थे जिन्होंने राज्य की निधि को बढ़ाने में योगदान दिया था। फिरौन को अपने वैभवशाली महलों व मंदिरों के निर्माण के लिए ऐसे श्रमिकों की आवश्यकता थी। इसके अनुसार उसने इसराइलियों को उसी वर्ग में रख दिया जो उन मिस्रियों का था जिन्होंने स्वयं को अपनी धन संपत्ति सहित राज्य के हाथों बेच दिया था। उन पर बेगारी कराने वाले को नियुक्त कर दिया गया और इस प्रकार वे पूर्ण रूप से दासत्व में बंध गए। और मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। लेकिन ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। फिरौन और उसके परामर्शदाताओं ने कठोर परिश्रम करवाकर इसराइलियों का दमन करके उनकी संख्या को घटाने और उनके स्वतंत्र स्वभाव को कुचल डालने की आशा की थी। अपने उद्देश्य की आपूर्ति में असफल होने पर उन्होंने और भी निर्मम युक्तियां अपनाईं। उन महिलाओं को आदेश दिए गए जिनकी नियुक्ति उन्हें नवजात इब्री बालकों को नष्ट कर देने की आज्ञा का पालन करने का अवसर प्रदान करती थीं। इस विषय में पहल करने वाला शैतान था। उसे ज्ञात था कि इसराइलियों में से एक मुक्तिदाता आने को था और फिरौन के माध्यम से बालकों को नष्ट करवाकर वो ईश्वरीय प्रयोजन को नष्ट कर देना चाहता था। लेकिन महिलाएं परमेश्वर का भय रखने वाली थीं और उन्होंने उस निर्दयी जनादेश का पालन करने का दुस्साहस नहीं किया। परमेश्वर ने उनके उपाय को स्वीकार किया और उन्हें समृद्ध किया। अपनी युक्ति की असफलता से क्रोधित फिरौन ने आदेश को और भी आग्रहपूर्ण और व्यापक बना दिया। पूरे राज्य को अधिकार दे दिया गया कि उसके असहाय अहेरों को ढूंढकर मार दिया जाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। जब यह राजाज्ञा पूरे जोर पर थी, लेवी के घराने के धर्मपरायण इसराइलियों अमराम और योकेबेद से एक बेटा उत्पन्न हुआ। ये बालक एक सुंदर बालक था। ये विश्वास रखते हुए कि इसराइल के मुक्त होने का समय निकट आ रहा था और ये कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक मुक्तिदाता को खड़ा करेगा, उसके माँ बाप ने निश्चय किया कि वे अपने बालक की बलि नहीं चढ़ने देंगे। परमेश्वर में विश्वास ने उनके हृदयों को स्थिर किया और वे राजा की आज्ञा से भयभीत न हुए। इब्रानियों 11:23। 3 मास तक माँ बच्चे को छिपाए रखने में सफल रही। जब उसे लगने लगा कि वो उसे और दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकती थी, तब सरकंडों की एक टोकरी लेकर उसे चिकनी मिट्टी और तारकोल से जलरोधक बनाकर उसने बालक को उसमें रखकर और नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। अपने बच्चे व अपने प्राण गवा देने के डर से वो वहां खड़े रहकर उसकी रक्षा करने का दुस्साहस न कर सकी, लेकिन बालक की बहन मिरियम वहीं रुकी रही बेपरवाह, लेकिन उत्सुकता से ये देखते हुए कि उसके भाई का क्या हाल होगा। देखने वाले और भी थे। माँ की विश्वास भरी प्रार्थनाओं ने बालक को परमेश्वर की सुरक्षा के सुपुर्द कर दिया था और अदृश्य स्वर्गदूत उसके साधारण विश्राम स्थान के ऊपर मंडरा रहे थे। स्वर्गदूत ने वहां फिरौन की पुत्री को भेजा। छोटी सी टोकरी ने उसकी उत्सुकता को जागृत किया और जब उसने उसके अंदर उस सुंदर बालक को देखा तो एक ही झलक में उसने कहानी को पढ़ लिया। बच्चों के आंसुओं ने उसकी करुणा को जागृत किया और उस माँ पर बहुत तरस आया जिसने अपने अनमोल नवजात शिशु के प्राणों की सुरक्षा के लिए ये तरीका अपनाया था। उसने शिशु को अपनी ही संतान के रूप में अपनाकर बचाने का निश्चय किया। मिरियम छिपकर प्रत्येक गतिविधि को देख रही थी। ये देखकर कि बालक पर नम्रतापूर्वक विचार किया जा रहा था, वो पास जाकर बोली, क्या मैं जाकर इबड़ी स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करें? और उसे अनुमति दे दी गई। बहन जल्दी से ये शुभ समाचार लेकर माँ के पास गई और अविलंब फिरौन की बेटी के उपस्थिति में उसके साथ लौटी। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। परमेश्वर ने माँ की प्रार्थनाओं को सुना था, उसके विश्वास का प्रतिफल उसे मिला। अत्यंत कृतज्ञता के साथ उसने अपना सुरक्षित और आनंददायक काम शुरू किया। उसे आभास हुआ कि बालक को किसी महान कार्य के लिए संरक्षित किया गया था और वह ये भी जानती थी कि जल्द ही उसे उसकी राजसी माता के सुपुर्द कर दिया जाएगा और तब वो ऐसी शक्तियों से घिरा होगा जो उसे परमेश्वर से दूर ले जा सकती थीं। ये सब सोचकर अपने अन्य बच्चों से ज्यादा उसे शिक्षा देने में वो सावधान और उद्यमी थी। उसने उसके मन को परमेश्वर के भय, सत्य और न्यायपरायणता के प्रति प्रेम से व्याप्त करने का प्रयत्न किया और आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वो प्रत्येक भ्रष्ट कर देने वाले प्रभाव से सुरक्षित रहें। उसने उसे मूर्ति पूजा के पाप और अज्ञानता से परिचित करवाया और कम आयु में ही उसे जीवित परमेश्वर के सम्मुख झुकना और प्रार्थना करना सिखाया, क्योंकि केवल परमेश्वर उसकी सुन सकता था और प्रत्येक आपातकाल में उसकी सहायता कर सकता था। उसने जब तक उससे हो सका बालक की देखभाल की, लेकिन जब वो 12 वर्ष का हो गया तो वो उसको अपने से अलग करने को विवश हो गई। उसके साधारण घर से उसे फिरौन की बेटी के पास राजसी महल में ले जाया गया जहां वो उसका बेटा ठहरा, लेकिन यहां भी वो बचपन में प्राप्त हुए संस्कारों को नहीं भूला। जो सबक उसने अपनी मां से सीखे थे उन्हें उसने हमेशा याद रखा। ये संस्कार दरबार के वैभव के बीच पनपने वाली अधर्म और घमंड के प्रति एक कवच के समान थे। कितना व्यापक था अपने परिणामों में उस एक इब्री स्त्री का प्रभाव, और वो भी एक प्रवासी और दास। मूसा का संपूर्ण भावी जीवन व इसराइल अगुवा होने के नाते जो महान विशिष्ट कार्य उसने संपन्न किया था, एक मसीही मां के काम के महत्व को प्रमाणित करता है। इस काम का कोई तुल्य नहीं। बहुत हद तक बच्चों का भविष्य मां के हाथों में होता है। उसका काम विकासशील चरित्रों और मनों से संबंधित है, जो केवल समय के लिए नहीं वरन अनंतकाल के लिए कार्यशील रहती है। वो बीज बोती है जो अंकुरित होता है और फल देता है, भले के लिए या बुरे के लिए। उसे ना तो कैनवस पर सौंदर्य के आकार को पेंट करना है और ना ही संगमरमर से काट कर निकालना है, वरन ईश्वर की छवि की मानव पर छाप छोड़नी है। विशेषकर बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनके चरित्र निर्माण का दायित्व मां पर होता है। जो प्रभाव उनके विकासशील बुद्धि पर पड़ता है वो उनके साथ जीवन भर रहता है। अभिभावकों को अपने बच्चों को मसीही रखने के उद्देश्य से उन्हें बहुत कम आयु से निर्देश और प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें एक सांसारिक साम्राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, वरन चिरकालिक युगों के दौरान राज करने के लिए परमेश्वर में राजाओं के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु हमारी देखरेख में रखा गया है। प्रत्येक मां को लगना चाहिए कि उसके क्षण अनमोल है, लेखा जोखा के पवित्र दिन उसके कार्य को परखा जाएगा। उस समय ज्ञात होगा कि पुरुषों व स्त्रियों के अपराध और विफलताएं उन लोगों की उपेक्षा और अज्ञानता का परिणाम है जिनका कर्तव्य था कि वे बचपन में अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें। फिर ज्ञात होगा कि कई लोग जिन्होंने पवित्रता और सच्चाई और प्रतिभा के प्रकाश से संसार को धन्य किया, वे उनकी सफलता और प्रभाव की प्रेरणा देने वाले सिद्धांतों का श्रेय एक प्रार्थना में लीन मसीही मां को देते हैं। फिरौन के दरबार में मूसा ने सर्वोच्च मानव समाज संबंधी व सामरिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिरौन ने अपने दत्तक नाती को अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया था और नौजवान को उसके ऊंचे पद के लिए शिक्षित किया गया। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। प्रेरितों के काम 7:32। सैनिक अधिकारी के रूप में उसकी योग्यता ने उसे मिस्र की सेनाओं का प्रीतिपात्र बना दिया और उसे एक असाधारण व्यक्ति माना जाता था। शैतान अपनी योजना में पराजित हुआ। जिस आज्ञा के अनुसार इब्री बालकों को मृत्यु के घाट उतारा जाना था, वो परमेश्वर के द्वारा रद्द कर दी गई ताकि उसके लोगों के भावी अगवे का प्रशिक्षण और शिक्षण हो सके। इज़राइल के बड़ों को स्वर्गदूतों द्वारा सिखाया गया कि उनकी मुक्ति का समय निकट था, और मूसा वो पुरुष था जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने वाला था। स्वर्गदूतों ने मूसा को भी निर्देश दिया कि परमेश्वर ने उसके लोगों को दासत्व से निवारण के लिए उसे चुना था। मूसा ने यह सोचकर कि वे अस्त्र शस्त्र की ताकत से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, मिस्र की सेनाओं के विरुद्ध इब्री सेना का नेतृत्व करने की अपेक्षा की, और इसी बात को दृष्टि में रखते हुए उसने अपने मोह को सीमित रखा कि कहीं अपनी पालन पोषण करने वाली मां से या फिरौन से लगाव के कारण वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को स्वतंत्र न होगा। मिस्र के नियमों के अनुसार जो भी फिरौन के सिंहासन पर बैठता था उसके लिए धर्मगुरु की जाति का सदस्य बनाना अनिवार्य था, और मूसा को होने वाला उत्तराधिकारी होने के नाते राष्ट्रीय धर्म के रहस्यों में दीक्षित होना था। यह कर्तव्य धर्मगुरुओं को दिया गया, लेकिन जब तक वह एक उत्कृष्ट और अथक विद्यार्थी था उसे देवी देवताओं की आराधना में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। उसे सिंहासन खो देने की धमकी दी गई और यह चेतावनी दी गई कि यदि वह इब्री विश्वास के प्रति अपनी भक्ति में लीन रहेगा तो उसका राजकुमारी द्वारा परित्याग कर दिया जाएगा। लेकिन मूसा एकल परमेश्वर को छोड़ और किसी को श्रद्धांजलि न देने के संकल्प में दृढ़ था। उसने धर्मगुरुओं और आराध्यों से तर्क वितर्क किया और निजीव वस्तुओं की अंधविश्वासी उपासना करने की मूर्खता से परिचित करवाया। कोई भी उसके तर्कों का खंडन न कर सका और न ही उसके लक्ष्य को बदल सका, लेकिन उस समय के लिए उसके उच्च पद और फिरौन और लोगों की कृपा दृष्टि का पात्र होने के कारण उसकी दृढ़ता को सहन कर लिया गया। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि वह अपना प्रतिफल पाने की बाट जोह रहा था। मूसा पृथ्वी के महान लोगों में विशिष्ट कहलाने, उसके सबसे गौरवशाली राज्य के दरबारों में सम्मानित होने व उसके अधिकार का राजदंड धारण करने के योग्य था। उसकी विवेक संबंधी श्रेष्ठता उसे सब युगों के महापुरुषों से अधिक विशिष्ट ठहराती है। इतिहासकार, कवि, दर्शनशास्त्री, सेनाध्यक्ष और विधायक के रूप में उसका कोई तुल्य नहीं। फिर भी संसार के सामने होते हुए भी उसमें प्रसिद्धि और श्रेष्ठता और धन संपत्ति के लुभावने प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हौसला था, और उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने को चुना। मूसा को परमेश्वर के दीन और आज्ञाकारी सेवकों को दिए जाने वाले निर्णायक पुरस्कार के संबंध में निर्देशित किया गया था, और उसकी तुलना में सांसारिक लाभ अपने वास्तविक महत्वहीनता पर उतर आया। फिरौन का शानदार महल और उसका सिंहासन मूसा के लिए प्रलोभन के रूप में सामने आए, लेकिन वह जानता था कि उसके भव्य दरबारों में वे पापमय सुख थे जो मनुष्यों को परमेश्वर को भुला देने का काम करते हैं। उसने वैभवपूर्ण महल के परे, सम्राट के मुकुट के परे, पाप रहित राज्य में सर्वश्रेष्ठ के पवित्र लोगों को मिलने वाले सम्मान को देखा। विश्वास के द्वारा उसने स्वर्ग के राजा द्वारा विजेता के सिर पर रखे जाने वाले अनवश्वर मुकुट को देखा। इसी विश्वास ने उसे पृथ्वी के तेजस्वी राज्यों से मुंह मोड़कर उस दीन, दरिद्र और तिरस्कृत जाति से जुड़ने को विवश किया जिन्होंने पाप के काम करने के बजाय परमेश्वर की आज्ञा मानने को चुना था। मूसा 40 वर्ष की आयु तक दरबार में रहा। अपने लोगों की दयनीय स्थिति पर वो अक्सर विचार किया करता था, और वो दासत्व में फंसे अपने भाइयों से मिलता था और उन्हें ये आश्वासन देकर प्रोत्साहित करता था कि परमेश्वर उनकी मुक्ति को कारगर करेगा। प्रायः उन पर किए जाने वाले अत्याचार व अन्याय के दृश्यों से क्रोधित होकर वो प्रतिशोध की आग में जलता था। एक दिन जब वो बाहर था, उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक भाई को मार रहा था। वो आगे कूद पड़ा और उसने मिस्री को मार डाला। इजरायली भाई के अलावा और कोई साक्ष्य को न देख उसने तुरंत उस शव को बालू में गाड़ दिया। अब उसने स्वयं को ये प्रमाणित कर दिया था कि वो अपने लोगों के आंदोलन को कायम रखने को तैयार था और उन्हें अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने हेतु जागृत होते हुए देखने का इच्छुक था। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उसका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। प्रेरितों के काम 7:25। वे अभी स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे दिन मूसा ने दो इब्रियों को लड़ते हुए देखा, जिनमें से एक यथार्थ में गलत था। मूसा ने अपराधी को डांटा, जो ये कहते हुए एकदम प्रतिकार पर उतर आया कि मूसा को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, और वो मूसा पर ही अपराध का आरोप लगाने लगा। तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? ये सारी बात शीघ्र ही मिस्रियों में फैल गई और बढ़ चढ़कर फिरौन के कानों तक पहुंची। राजा के सम्मुख इस घटना को ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो वो बहुत कुछ कह रही हो, कि मूसा अपने लोगों का मिस्रियों के विरुद्ध नेतृत्व करना चाहता था। वो सरकार को पराजित करना चाहता था और स्वयं सिंहासन पर बैठना चाहता था, और ये कि उसके जीवित रहते हुए राज्य सुरक्षित नहीं था। फिरौन ने तुरंत निर्णय किया कि मूसा को मरना होगा, लेकिन मूसा इस खतरे से सावधान होकर अरब की ओर बचकर भाग निकला। परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया और उसे मिद्यान के राजकुमार और धर्मगुरु यित्रो, जो स्वयं परमेश्वर का आराध्य था, के घर में आश्रय मिला। कुछ समय पश्चात मूसा ने यित्रो की एक बेटी से विवाह किया और वहां अपने ससुर की सेवा में भेड़ बकरियां चराते हुए उसने 40 वर्ष व्यतीत किए। मिस्री को मारने में मूसा वहीं पाप कर बैठा था जो उसके पूर्वज प्रायः किया करते थे। जिस काम को करने की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हो, उसके स्वयं अपने हाथों में ले लेने की गलती। अपने लोगों को युद्ध के माध्यम से स्वतंत्र कराना परमेश्वर की इच्छा न थी, जैसा कि मूसा ने सोचा, वरन परमेश्वर अपने निजी पराक्रमी सामर्थ्य से उन्हें स्वाधीन कराना चाहता था, ताकि महिमा केवल उसी को मिले। लेकिन ये अविवेकीय कृत्य भी परमेश्वर द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भुला दिया गया। मूसा अपने महान कार्य के लिए तैयार नहीं था। उसे अभी भी विश्वास का वो सबक सीखना था जो अब्राहम और याकूब को सिखाया गया था, कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने के लिए मानवीय सामर्थ्य व बुद्धि पर नहीं, वरन परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और सबक थे जो पहाड़ी के एकांत में मूसा को प्राप्त होने थे। आत्मत्याग और कठिनाइयों की पाठशाला में उसे अपने आवेग पर नियंत्रण रखना और धैर्यवान होना सीखना था। बुद्धिमानी से शासन करने से पहले उसे आज्ञा पालन के लिए प्रशिक्षण पाना था, इससे पहले कि वो परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान उसके लोगों को दे सकता, परमेश्वर के साथ हार्दिक सामंजस्य आवश्यक था। अपने अनुभव से उसे उन सब की पिता समान देखभाल करने के लिए तैयार होना था जिन्हें उसकी सहायता की आवश्यकता थी। व्यर्थ समय गंवाना मानकर मनुष्य अज्ञानता और परिश्रम की लंबी अवधि से स्वयं को मुक्त कर लेता, लेकिन असीमित ज्ञान यानी परमेश्वर ने उसे, जिसे उसके लोगों का अगुआ बनना था, 40 वर्षों तक चरवाहे का दीन काम करने के लिए नियुक्त किया। इस व्यवसाय के द्वारा विकसित देखभाल, स्वयं को भूल जाना और भेड़ बकरियों के प्रति संवेदनशील चिंता की व्यवहारिक विशेषताएं उसे इसराइल का संवेदनशील व सहनशील चरवाहा बनने के लिए तैयार करती। मानवीय प्रशिक्षण या रीति रिवाज द्वारा दिया गया कोई भी सुअवसर इस अनुभव का प्रतिनिधि नहीं हो सकता था। अभी तक मूसा वह सीख रहा था जिसे उसे भुलाना था, वे प्रभाव जो मिस्र में उसे चारों ओर से घेरे हुए थे, पालन पोषण करने वाली उसकी मां, फिरौन का नाती होने के नाते उसका उच्च पद, हर तरफ भ्रष्टाचार, कृत्रिम धर्म की सजावट, जटिलता और रहस्यवाद, मूर्ति पूजा का वैभव, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प की प्रभावशाली भव्यता, इन सब ने उसके विकासशील मन पर गहरा प्रभाव डाला था और कुछ हद तक उसके चरित्र और आचरण को ढाला था। समय, परिवेश में बदलाव और परमेश्वर के साथ संपर्क इन संस्कारों को दूर कर सकते थे। इसके लिए मूसा को वैसा ही संघर्ष करना था जैसा कि वह अपने प्राणों के लिए करता, ताकि वह असत्य को त्याग कर सत्य को अपना सके। लेकिन संघर्ष के मानवीय सामर्थ्य के लिए अधिक विकट होने पर परमेश्वर उसका सहायक हुआ। उन सब में जिन्हें परमेश्वर के किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए चुना जाता है, वह मानवीय प्राकृतिक स्वभाव दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वे आचरण व चरित्र से रूढ़िवादी नहीं थे, जो उसी अवस्था में रहने में संतुष्ट थे। वे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करने और उसके कार्यों को करने की शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा करते थे। अनुयायी कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलहाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। याकूब 1:5। लेकिन जब मनुष्य अंधकार में रहने में संतुष्ट है, तब परमेश्वर उन्हें ईश्वरीय प्रकाश नहीं प्रदान करेगा। परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी निर्बलता व अपूर्णता का आभास होना चाहिए। स्वयं में बदलाव लाए जाने के लिए उसे मन से तैयार होना चाहिए। उसे निरंतर प्रार्थना व प्रयत्न के लिए जागरूक होना चाहिए। गलत आदतों व प्रथाओं को दूर कर देना चाहिए। इन गलतियों को सुधारने हेतु निर्धारित प्रयत्न और पवित्र सिद्धांतों की पुष्टि द्वारा ही विजय प्राप्त हो सकती है। कई लोग उस पद तक नहीं पहुंचते जहां वे हो सकते थे, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा वह करने के लिए रुके रहते हैं जिसे स्वयं करने की सामर्थ्य उन्हें परमेश्वर द्वारा दी गई है। जो भी उपयोग में लाए जाने योग्य है, उन्हें कठोरतम मानसिक व सात्विक अनुशासन द्वारा प्रशिक्षण मिलना चाहिए, और मानवीय प्रयत्न के साथ ईश्वरीय सामर्थ्य को जोड़ने में परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। पहाड़ों के एकांतवास में मूसा परमेश्वर के साथ अकेला था। मिस्र के भव्य मंदिर अब उसके मन को उनके अंधविश्वास और भ्रांति द्वारा प्रभावित नहीं करते थे। उन अनंत पहाड़ों के पवित्र गौरव में उसने सर्वोच्च परमेश्वर के गौरव को देखा और उसे आभास हुआ कि इसकी तुलना में मिस्र के देवी देवता कितने महत्वहीन और शक्तिहीन हैं। प्रत्येक जगह सृष्टिकर्ता का नाम अंकित था। मूसा को प्रतीत होता था कि वह उसकी उपस्थिति में खड़ा है और उसके सामर्थ्य की छाया उस पर है। यहां उसका घमंड और उसकी आत्मनिर्भरता दूर हो गए। निर्जन प्रदेश में जीवन की कठोर सादगी में भोग विलास व सहजता के परिणाम विलोप हो गए। मूसा धैर्यवान, श्रद्धापूर्ण, दीन, पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का हो गया। गिनती 12 आयत 3। फिर भी वह याकूब के परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। समय बीतता गया और वह एकांत स्थानों में अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमता था। अपने लोगों की उत्पीड़ित दशा पर मनन करते हुए उसे अपने पूर्वजों के साथ परमेश्वर का व्यवहार और चुनी हुई जाति की धरोहर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का स्मरण हुआ और वह रात दिन इज़राइल के लिए प्रार्थना करने लगा। पवित्र स्वर्गदूतों ने उसके चारों ओर अपना प्रकाश बिखेरा। यहां पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने उत्पत्ति की पुस्तक लिखी। मरुधर के एकांत में बिताए चिरकाल न केवल मूसा और उसके लोगों के लिए वरन उत्तरगामी युगों में जगत के लिए बहुतायत से आशीषें लाए। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इज़राइली दासत्व के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो दासत्व से प्रवाहित थी परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इज़राइलियों की मुक्ति का समय आ गया था। लेकिन परमेश्वर की योजना को इस प्रकार से परिपूर्ण होना था कि मानवीय घमंड का तिरस्कार हो। मुक्ति दिलाने वाले को हाथ में केवल एक लाठी लिए हुए एक दीन चरवाहा बनकर जाना था, लेकिन परमेश्वर उसी लाठी को उसके सामर्थ्य का प्रतीक बनाने वाला था। एक दिन होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए मूसा ने एक जलती हुई झाड़ी को देखा, जिसकी शाखाएं, तना, पत्ते सब जले रहे थे लेकिन भस्म नहीं हो रहे थे। वह इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखने के लिए झाड़ी के पास गया और झाड़ी के बीच आग की लौ में से एक आवाज ने उसे नाम लेकर बुलाया। कपकपाते होठों से उसने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। उसे सावधान किया गया कि वह उस स्थान पर श्रद्धाहीनता से आगे न बढ़े। इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को निकाल दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। ये वही था जिसने वाचा के स्वर्गदूत के रूप में बीते युगों में उसके पूर्वजों को दर्शन दिए थे। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले सभी मनुष्यों के आचरण में आदर और दीनता चरितार्थ होने चाहिए। यीशु के नाम में हम आत्मविश्वास के साथ उसके सम्मुख तो आ सकते हैं, लेकिन उसके पास जाने में हमें यह सोचने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए कि वह भी उसी स्तर पर है जहां हम हैं। कई लोग हैं जो अगम्य प्रकाश में निवास करने वाले महान, पवित्र व सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ऐसे संबोधित करते हैं जैसे वे अपने तुल्य या अपने से निम्न व्यक्ति को संबोधित करते हैं। फिर वे लोग हैं जो परमेश्वर के घर में ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा वे एक सांसारिक शासक के श्रोता कक्ष में करने को सोचेंगे भी नहीं। इन्हें स्मरण रखना चाहिए कि वे उसकी दृष्टि में हैं जिसकी प्रशंसा उच्च कोटि के स्वर्गदूत करते हैं, जिसके सामने स्वर्गदूत भी अपने मुंह ढांप लेते हैं। परमेश्वर को बहुत आदर मिलना चाहिए। जिन्हें उसकी उपस्थिति का आभास होता है वे उसके सामने दीनतापूर्वक दंडवत करेंगे और परमेश्वर का दर्शन पाते हुए याकूब की तरह ऊंचे स्वर में कहेंगे, कितना डरावना है ये स्थान। ये स्थान कोई और नहीं वरन परमेश्वर का घर है और यह स्वर्ग का फाटक है। मूसा परमेश्वर के सम्मुख आदरपूर्ण भय के साथ रुका रहा और परमेश्वर का कथन जारी रहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकलकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। आज्ञा सुनकर आश्चर्यवकित और भयभीत मूसा पीछे हटकर बोला, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसे उत्तर मिला, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर उपासना करोगे। मूसा उन कठिनाइयों के बारे में सोचने लगा जिसका उसे सामना करना था, अपने लोगों की अज्ञानता, दृष्टिहीनता और अविश्वास, और वे जिनमें परमेश्वर संबंधी ज्ञान का अभाव था। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? इस प्रश्न का उत्तर मिला, मैं जो हूं सो हूं। तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मूसा को आज्ञा दी गई कि वो इसराइली पुरनियों को इकट्ठा करे, जो उनमें सबसे शिष्ट और धर्मी थे, जो अपने दासत्व के कारण बहुत समय दुखी रहे, और उन्हें परमेश्वर की ओर से छुटकारे की प्रतिज्ञा के साथ ये संदेश दे। तत्पश्चात उसे पुरनियों सहित राजा के सामने जाकर ये कहना था, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको बीहड़ में 3 दिन की यात्रा की अनुमति दे, ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मूसा को पहले से ही ज्ञात कराया गया था कि फिरौन इसराइल को जाने देने की याचना को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास का साहस कम नहीं होना था, क्योंकि परमेश्वर इस बात को अपने लोगों और मिस्रियों के सम्मुख अपने सामर्थ्य को प्रकट करने का अवसर बनाना चाहता था। मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्यकर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वो तुमको जाने देगा। यात्रा के लिए सामग्री संबंधित निर्देश भी दिया गया। परमेश्वर ने कहा, जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। मिस्री लोग इसराइलियों से बेगार करवाकर धनवान हुए थे, और अब जब इसराइली अपने नए घर की ओर यात्रा शुरू करने वाले थे, ये उनका अधिकार था कि वे अपने वर्षों के परिश्रम के प्रतिफल का दावा करें। उन्हें मूल्यवान वस्तुएं मांगनी थी जिन्हें आसानी से ले जाया जा सके, और परमेश्वर मिस्रियों की दृष्टि में उन पर कृपा दृष्टि करेगा। उनकी मुक्ति के लिए किए गए सामर्थी आश्चर्यकर्म अत्याचारियों में भय उत्पन्न करते, ताकि दासों की मांग पूरी हो सके। मूसा अपने सामने दुर्गम प्रतीत होने वाली कठिनाइयां देख रहा था। वो अपने लोगों को क्या प्रमाण दे सकता था? परमेश्वर ने वास्तव में उसे भेजा था? उसने कहा, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। अब उसे वो प्रमाण दिया गया जो उसकी इंद्रियों को भावता था। उससे कहा गया कि वो अपनी लाठी को भूमि पर फेंके। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। फिर उसे सर्प को पूंछ से पकड़ लेने की आज्ञा दी गई और उसके हाथ में वो फिर लाठी बन गया। फिर उसे उसका हाथ छाती पर रखकर ढांपने को कहा गया, और फिर जब उसने हाथ बाहर निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया था। फिर उसे दोबारा अपना हाथ छाती पर रखकर ढांपने को कहा गया, और वापस निकाले जाने पर उसने उसे अपने दूसरे हाथ के समान पाया। इन चिन्हों से परमेश्वर ने मूसा को आश्वस्त किया कि उसके अपने लोगों व फिरौन को ये विश्वास हो जाएगा कि मिस्र के राजा से अधिक शक्तिशाली प्रकट रूप से उनके बीच में था। लेकिन परमेश्वर का दास अभी भी उस अद्भुत और चमत्कारिक कार्य के जो उसके सामने था, विचार से डरा हुआ था। दुख और डर के प्रभाव में उसने हकलाने का बहाना बनाया, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं तो धीरे धीरे बोलता हूं और उत्तम शब्दों का प्रयोग नहीं करता। वो मिस्रियों से बहुत दिनों पहले दूर हो गया था, और अब उसे उनकी भाषा का ना ही सही उपयोग करना आता था, और ना ही उसका स्पष्ट ज्ञान, जो कि तब था जब वो उनके बीच था। परमेश्वर ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? साथ ही उसने ईश्वरीय सहायता का एक और आश्वासन दिया, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। लेकिन फिर भी मूसा ने आग्रह किया कि उसे अधिक योग्य व्यक्ति को चुना जाए। पहले ये बहाने संकोच और विनम्रता से उत्पन्न हुए थे, लेकिन परमेश्वर द्वारा दी गई प्रतिज्ञा के बाद कि वो सब कठिनाइयों को दूर कर देगा और उसे निर्णायक सफलता देगा, उसका और संकोच करना और अपनी निर्बलता पर कुड़कुड़ाना परमेश्वर के प्रति अविश्वास प्रकट करता। इसका अभिप्राय एक डर से था कि जिस महान कार्य के लिए उसे परमेश्वर ने बुलाया था, उसी के लिए वो मूसा को सुयोग्य नहीं बना सका, या उसने मनुष्य के चुनाव में उससे गलती हुई थी। मूसा का ध्यान उसके बड़े भाई हारून की ओर किया गया, जो मिस्रियों की भाषा का प्रतिदिन प्रयोग करके उसे भली भांति बोल सकता था। उससे कहा गया कि हारून उससे भेंट करने आ रहा था। परमेश्वर द्वारा बोला गया अगला वचन एक अप्रतिबंध आज्ञा था, तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। वो तेरी ओर से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा, और तू उस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। मूसा इसके आगे प्रतिरोध न कर सका, क्योंकि बहानों का संपूर्ण आधार ही हटा दिया गया। मूसा को दी हुई ईश्वरीय आज्ञा ने उसे स्व अविश्वासी, हकलाने वाला और कायर पाया। इज़राइल के परमेश्वर का प्रवक्ता बनने में अयोग्य होने की भावना से वो विवल हो गया, लेकिन एक बार कार्य को स्वीकार करने के बाद परमेश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ वो सहृदय उस कार्य को करने में जुट गया। उसके उद्देश्य की महानता ने उसके विवेक की उत्तम क्षमताओं का अभ्यास करवाया। परमेश्वर ने उसकी तत्पर आज्ञाकारिता को आशीष दी और वो मनुष्यों को अब तक दिए गए कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य को करने के लिए शब्द चतुर, आशावादी, आत्मसंपन्न व सुयोग्य बन गया। ये इस बात का उदाहरण है कि परमेश्वर उनके चरित्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या करता है जो उसमें पूरी तरह से विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पूरी तरह पालन करता है। जब मनुष्य परमेश्वर द्वारा दिए गए दायित्व को स्वीकार कर लेता है और उसे सही तरह से निभाने के लिए पूरे मन से स्वयं को योग्य बनाने का प्रयत्न करता है, उसे शक्ति और कार्यक्षमता प्राप्त होती है। उसका पद कितना ही निम्न और उसकी दक्षता कितनी ही सीमित हो, वो मनुष्य वास्तविक महानता को प्राप्त करेगा जो ईश्वरीय सामर्थ्य में विश्वास रखते हुए अपने कार्य को संपूर्ण निष्ठा के साथ करता है। यदि मूसा ने अपनी सामर्थ्य और बुद्धिमानी पर निर्भर किया होता और इस महान प्रभार को उत्सुकतापूर्वक ग्रहण कर लिया होता, तो उसने ऐसे कार्य के लिए अपनी सारी अयोग्यता का प्रदर्शन कर दिया होता। मनुष्य का कमी का आभास इस बात का प्रमाण है कि वो उसे दिए गए कार्य के महत्व को पहचानता है और ये कि वो परमेश्वर को अपना परामर्शदाता और अपनी ताकत बनाएगा। अपने ससुर यित्रो के पास लौटकर मूसा ने मिस्र में अपने भाइयों से भेंट करने जाने की इच्छा व्यक्त की। यित्रो ने कहा, कुशल से जा, और उसे जाने की अनुमति दी। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मूसा यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने विशेष कार्य का उद्देश्य बताने का दुस्साहस नहीं किया, नहीं तो उसे पत्नी और बच्चों के साथ ले जाने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन मिस्र पहुंचने से पहले उसने स्वयं उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें मिद्यान में उनके घर वापस भेजना उचित समझा। फिरौन और मिस्रियों का एक अप्रकट भय, जिनका क्रोध 40 वर्ष पूर्व उसके प्रति भड़क उठा था, मूसा को मिस्र देश को लौटने से विमुख कर रहा था। लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने निकल पड़ा, तब परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि उसके शत्रु मर चुके थे। मिद्यान से मिस्र के मार्ग पर मूसा को परमेश्वर के क्रोध की एक आश्चर्यजनक व भयानक चेतावनी मिली। एक स्वर्गदूत उसको तत्काल मार देने वाले भयानक रूप में प्रकट हुआ। उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन मूसा को स्मरण हुआ कि उसने परमेश्वर की एक आज्ञा को नहीं माना था। अपनी पत्नी के अनुनय के आगे समर्पण कर उसने अपने सबसे छोटे पुत्र के खतने की विधि का पालन नहीं किया था। उसने उस प्रतिबंध का अनुपालन नहीं किया था जिससे उसका पुत्र परमेश्वर की इज़राइल के साथ बांधी वाचा के आशीर्वाद का हकदार हो सकता था। चुने हुए अगुवा की ओर से ऐसी अवहेलना लोगों पर निश्चित रूप से पवित्र आज्ञाओं का दबाव कम कर देती। इस डर से कि उसके पति को मार दिया जाएगा, सिप्पोरा ने खतने की विधि स्वयं संपन्न की और फिर स्वर्गदूत ने मूसा को अपनी यात्रा पर बढ़ने की अनुमति दी। फिरौन से संबंधित विशेष कार्य में मूसा को एक संकटपूर्ण पद पर आसीन होना था। उसका जीवन केवल पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा के माध्यम से संरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन यदि वो एक ज्ञात कर्तव्य की अवहेलना करते हुए जीवित रहता तो वो सुरक्षित न होता, क्योंकि तब परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी रक्षा न कर पाते। मसीह के आगमन के ठीक पहले संकटकाल में धर्मी जनों को स्वर्गदूतों की सहायता से संरक्षित रखा जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के लिए कोई सुरक्षा न होगी। फिर स्वर्गदूत पवित्र आज्ञाओं का तिरस्कार करने वालों की रक्षा नहीं कर सकते।